पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो फॉन क्लेवेरेन नई दिल्ली में भारत चिली संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। असम सरकार ने कहा है कि असम बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 12 घंटे के बंद आह्वान पर राज्य भर में मिला जुला असर देखा जा रहा है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि भारत का औषधि क्षेत्र वर्ष 2030 तक 130 अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 55 अरब डॉलर है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो फॉन क्लेवेरेन नई दिल्ली में भारत चिली संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने के लिए चिली का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में चिली की भागीदारी को महत्व देता है। चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो फॉन क्लेवेरेन कल नई दिल्ली पहुंचे थे। वे अपनी चिली भारत व्यापार कृषि शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और बाद में मुंबई के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक प्रमुख भागीदार देश है। श्री क्लेवेरेन की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए अवसर तलाशने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। असम सरकार ने कहा है कि असम बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने आज विधानसभा में कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने से सीमा पार से अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि केवल 4 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होना बाकी है। श्री बोरा ने सदन को बताया कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने बाड़ लगाने से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए थे, जिनका समाधान कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने स्पैम संदेशों पर कॉल की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया है। उपभोक्ताओं को स्पैम कॉल और फर्जी संदेशों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नियामक की संयुक्त समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए नियामकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 12 घंटे के बंद आह्वान पर राज्य भर में मिला जुला असर देखा जा रहा है। कोलकाता में यातायात सामान्य है और दुकानें, स्कूल तथा कॉलेज खुले हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण हुगली में रेल सेवाएं बाधित हुई और नंदीग्राम तथा अलीपुरद्वार में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मालदा में सड़क जाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। इस बंद का आह्वान हाल ही में नबन्ना अभिजन विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के 9,35,000 से अधिक लोगों का आधार कार्ड जारी करेगी। उन्होंने गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फरवरी और अगस्त 2019 के बीच राज्य में एनआरसी बायोमेट्रिक संबंधी प्रक्रिया के कारण आधार आवंटन को रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को 15 से 30 दिन के भीतर आधार कार्ड मिलने की संभावना है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के अल्पकालिक उपायों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के बारे में सुझाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कार्यबल का गठन किया गया है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव ने नई दिल्ली में कार्यबल की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में कार्यबल के सदस्यों ने जानकारी दी कि उन्हें इस संबंध में करीब 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ को सुझाव से संबंधित शीर्षक से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर कोई भी अपने सुझाव भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यबल को निर्देश दिया है कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सौंप दे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत का औषधि क्षेत्र वर्ष 2030 तक 130 अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 55 अरब डॉलर है। वे आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत दवाओं की मात्रा के मामले में तीसरे सबसे बड़े उद्योग के साथ दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियों का घर है और इसके पास 10,500 से अधिक निर्माताओं का एक सशक्त तंत्र है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि जेनेरिक दवाओं की मांग में हमारी हिस्सेदारी 20% है। श्री प्रसाद ने इस बात पर बल दिया कि सरकार वर्ष 2047 तक देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग को वैश्विक रूप से अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से फार्मा क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना की शुरूआत का उल्लेख किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज नई दिल्ली में किशोरियों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इन मुद्दों से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास सचिव अनिल मलिक ने कहा कि समझौता ज्ञापन के तहत दोनों मंत्रालय महिलाओं को गैर पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने आज भारतीय वायुसेना के नायकों से संबंधित एक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किया। बच्चों के लिए तैयार की गई इस पुस्तक का प्रकाशन वायुसेना ने किया है। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को भारतीय वायुसेना के युद्ध इतिहास के बारे में जानकारी देना और बच्चों में कर्तव्य और प्रेरणा की भावना को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2034 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के क्रमोत्तर विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इसमें देश में कृषि क्षेत्र में जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is Akash Bani, the news read by Shubhashachi Bhattacharji. The government flagship financial inclusion scheme, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, today completed 10 years. More than 53 crore beneficiaries have been banked under the scheme so far. Prime Minister Narendra Modi has congratulated all beneficiaries and thanked those who made this scheme a success. In a social media post, PM said, Jan Dhan Yojana has been paramount in boosting financial inclusion and giving dignity to crores of people, especially women, youth and the marginalized communities. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the scheme integrates the poor into the economic mainstream and plays a crucial role in development of marginalized communities. She said Jan Dhan Mobile Aadhaar Trinity enables swift, seamless and transparent transfer of benefits of welfare schemes to eligible beneficiaries and promoted digital payments. She said 67% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, of which 55% have been opened by women. The National Task Force, NTF, formed by Supreme Court today held a meeting with State Chief Secretaries and Directors General of Police to discuss short-term measures for the security of medical professionals. The meeting was co-chaired by Union Home Secretary and Health Secretary via video conferencing. The task force has been set up by the Supreme Court to make recommendations for safety, security and working conditions of medical professionals. Yesterday, the Union Cabinet Secretary had chaired the first meeting of the task force in New Delhi. The meeting discussed in detail the various issues and the members of the task force put forth their suggestions. The Union Health Ministry has created a national portal on its website under the title Suggestions to NTF, seeking proposals from individuals and different stakeholders across the country. The apex court filed hearing the case regarding the rape and murder of a doctor at the RG Corps Medical College and Hospital in Kolkata had set up the NTF to ensure the safety of medical professionals. The Supreme Court had directed the NTF to submit its interim report within 3 weeks and the final report within 2 months. The BJP's 12-1 call in Bengal has evoked mixed response. In Kolkata, traffic is lighter, shops, schools and colleges are open. Private cars, taxis and buses are lower in numbers. The metro and air services are running normally in the city. Suburban train services have been affected by the strike at various places in Kolkata and adjacent districts. In Malda, clashes occurred between TMC and BJP workers over road blockades. The one call has been given to protest alleged police brutality against the students who participated in the rally towards the state secretariat Nobanno yesterday, demanding justice for the RG Corps rape and murder victim. More than 200 people were arrested. BJP state president and MOS education Dr. Sukanta Mujumdar has written a letter to the governor of West Bengal apprising him of the matter. Dr. Mujumdar also took part in a rally at Baguhati Kestupur area in North Kolkata. In Jammu and Kashmir, the scrutiny of nominations for the first phase of assembly election is taking place today. The nomination for this phase of assembly elections in J&K ended last evening. As many as 24 seats spread over 6 districts will go to polls in this phase on September 18. The last date for withdrawal of candidature is 30th August. Voting for the next 2 phases will be held on September 25 and October 1. The results will be announced on October 4. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for several districts of Gujarat for the next 48 hours and with forecast of extremely heavy rain at isolated places in Saurashtra and Kutch. IMD has also issued a flood risk alert for several districts including Ahmedabad and Vadodara. Over 200 tehsils of the state recorded light to heavy rainfall during the last 24 hours. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and assured all possible assistance from the centre to tackle the floods. A severe flood has caused extensive damage to infrastructure and public properties in Bhagalpur, West Champaran, Khagaria, Kishanganj, Patna and Katia districts. Meanwhile, the IMD has forecast very heavy to extremely heavy rainfall in western, central and coastal parts of the country for the next 2 to 3 days. The Paralympic Games 2024 will officially get underway in Paris today and will go on till 8 September. That's all in this news bulletin. Namaskar.